तो उपजे स्थान, उपजे स्थान का दो वाक्य में हर पुस्तक में लिखा होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ उपजे स्थान किसी ने नहीं बताया, कहीं नहीं लिखा। अगर संस्कृत में आप उसका मीनिंग देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उपजे यानी समृद्धि, किसी भी स्थान की समृद्धि करने वाला स्थान जो है उन्हें हम उपजे स्थान कहते हैं। अभी किसी भी स्थान से उसका द्वादश स्थान वो अपोक्लिम हुआ, वैसे पुस्तक में जो दिया हुआ एक नियम के हिसाब से सिर्फ ओनली कि हम थर्ड सिक्स्थ नाइन्थ एंड ट्वेल्थ हाउस को अपोक्लिम बोलते हैं। अपोक्लिम आप अक्लिम यानी आप यानी तेज, तेज को कम करने वाला स्थान अपोक्लिम स्थान होता है। तो अपन सिक्स हाउस को या ट्वेल्थ हाउस को किसी भी स्थान से हम उसको उसका महत्व देते हैं, ये कम करने वाले स्थान। बाकी दिया है पंठवर स्थान का महत्व दिया है, पंठवर यानी पनन व्यवसाय बढ़ाने वाला, किसी चीज का उत्पन्न देने वाला, ये पंठवर हो गया। उसी ढंग से ये उपजे स्थान है, उसका भी हम मीनिंग ज्यादा नहीं लेते हैं। तो उपजे स्थान बढ़ाने वाले किसी भी स्थान से तीन छह दस और ग्यारह ये स्थान उसके उपजे स्थान होते हैं। और किसी भी स्थान का रिजल्ट अगर हमें निकालना है तो अगर हम उपजे स्थान नहीं लेंगे तो हम उसका उत्तर नहीं निकाल पाएंगे। काल निर्णय करने के लिए इसकी बहुत जरूरत है। तो पहली चीज है कि हम पहले कारक स्थान ढूंढेंगे। जो कारक स्थान, जैसे अभी हम मैरिज की बात कर रहे हैं तो सेवंथ हाउस की थी डिनोटिंग थी मैरिज, सप्तम स्थान से मैरिज डिनोट करते हैं। सप्तम स्थान से आठवां स्थान जो होगा वो द्वितीय स्थान, वो उसका कारक हो गया। सो विल टेक दैट हाउस एज ए फर्स्ट वन, उसे हम प्रथम स्थान समझेंगे और वहां से हम उपजे स्थान गिनेंगे। तो पहले से थर्ड हाउस यानी फोर्थ हाउस हो गया। अगर हम सेकंड स्थान को कारक स्थान समझ लिया, यहां से थर्ड हाउस यानी एक दो तीन, थर्ड हाउस ये एक उपजे स्थान हुआ, यहां से सिक्स हाउस यानी ये दूसरा उपजे स्थान हुआ, यहां से दसम स्थान यानी एकादश स्थान हुआ, तीसरा उपजे स्थान और ये लास्ट उपजे स्थान हुआ बारहवां स्थान। इन चारों स्थान से मिलाकर के हम पांचों स्थान से मिलाकर के हम काल निर्णय करते हैं। इसमें थर्ड एंड अलेवंथ तीसरा और ग्यारहवां स्थान जो है वो सेकेंडरी उपजे स्थान होते हैं और प्राइमरी उपजे स्थान जो है एक छह और दस, एक छह और दस ये स्थान प्राइमरी उपजे स्थान है। ये इसके तीन की टोटल, इन तीन में क्या फल मिल रहा है, तीन में बैठे हुए प्लैनेट ये रिजल्ट दे रहे हैं। अगर आप जेमिनी किसी ने पढ़ी होगी तो उसमें फोर्थ हाउस को दारा स्थान कहते हैं। दारा मीन्स वाइफ माइ। फोर्थ हाउस को क्यों दिया? फोर्थ हाउस का वैसे कोई संबंध नहीं, कोई नहीं ले रहा है फोर्थ हाउस को। जनरली वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हम देखेंगे कि सप्तम स्थान का स्वामी, सप्तम स्थान में जो ग्रह बैठे हुए हैं वो ग्रह और उस पर दृष्टि करने वाले ग्रह, इनसे ही हम काल निर्णय करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी यहां पर इतने लोग हैं जिनको अपनी अपनी मैरिज की डेट याद आती होगी एंड इन दी मैरिज किस अंतर दशा में हुई वो आप चेक करिए। यू विल फाइंड मेजोरिटी ऑफ दी पर्सन माइट हैव मैरिड इन दी अंतर दशा ऑफ फोर्थ हाउस एंड ट्वेल्थ हाउस, ये चेक करिए आप खुद की उसमें। और अदरवाइज दी प्लैनेट सिचुएटेड इन फोर्थ एंड ट्वेल्थ, चतुर्थ स्थान में बैठे हुए ग्रह और द्वादश स्थान में बैठे हुए ग्रह की अंतर दशा में या उनके लॉर्ड में, इसमें मैरिज अबाउट 60% लोगों की होती है, बाकी की गलत से आती है वो चीज अलग है खुली। तो इनको हाउस के बारे में डिटेल से मैं उपजे स्थान कौन से कैसे निकलते हैं उस बारे में बता रहा हूं। या हैविंग दैट प्रोग्राम उपजे स्थान इमीडिएटली कंडीटर में या दिस इज उपजे स्थान। I think Dona might be program. Yeah, you can open this one or this one. Oh, yeah? Yeah. Now this is the chart with the arises lagna, mesh rashi ka lagna hai is pe. Agar hum pratham sthan ke liye baat kar rahe hain to wahan click karenge to aapko pratham sthan ka result ke bare mein aayega aur uske upar jo sthan milenge iske bare mein Mr. Banu will be telling more detail. Main sirf upar jo sthan kaise aa raha hai wo bata raha hu ki B house jahan par aa gaya usko wo denote wo karega that nomenclature wo batayenge Manu ji. जिस हाउस को लिया हमने ए हाउस लिया है तो उपजय कारक स्थान हो गया, वहां से छठा स्थान हमने गिना तो एक उपजय स्थान हो गया, ये कलर जो आ रहे हैं जितने वो सब उपजय स्थान डिनोट कर रहे हैं, तो पीला रंग जिसमें आ रहा है वो एक छह और दस है, और ये जो अलग कलर दे रहे हैं चॉकलेटी कलर दैट इज वो स्थान सेकेंडरी उपजय स्थान है, और सेकेंडरी उपजय स्थान के बारे में अगर हम देखें तो एक चीज यहां पर ख्याल में आएगी, तो जिस स्थान के बारे में हम प्रेडिक्शन करना चाह रहे हैं या जिस स्थान के बारे में हम बोलना चाह रहे हैं उससे ये छठे और दसवें हैं आगे दियार उपजय दिस बी हाउस दिया या जिसको लिखा है बी, इसलिए मैं बी बोल रहा हूं, बी का उसका मतलब वो और साहब बोलेंगे, तो बी से अभी ई के बारे में अगर बात करें सेकेंडरी तो 2006 एंड 10 यानी अगेन ये जिस स्थान का हम रिजल्ट देखने की या काल निर्णय करने की कोशिश करते हैं उसकी घटना के बारे में उससे भी ये स्थान उपजय स्थान ही है, मेन उपजय स्थान कारक से हो गए और जिस स्थान का हम भविष्य देख रहे हैं उससे भी वो हो गए, तो ये उपजय स्थान का महत्व पहली चीज सबसे पहले तो उसे आप ढूंढिए उसके अंदर बैठे हुए प्लैनेट और उनकी स्ट्रेंथ, जैसे अभी चिपलकट्टी साहब ने अष्टक वर्ग कैसे निकालते हैं ये सारी चीजें बताई, सो व्हाट वी आर डूइंग अष्टक वर्ग ये रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द प्लैनेट है, एक प्लैनेट की दूसरे के साथ में अगर पत्रिका में अगर हम सिर्फ चंद्र कुंडली देखें या लग्न कुंडली देखें या रवि की कुंडली देखेंगे तो हार्डली तीनों कुंडली मिला के हम 30% रिजल्ट पे जा सकते हैं, बाकी का रिजल्ट बाकी रह जाएगा, यहां पर अष्टक वर्ग में ईच एंड एवरी प्लैनेट का हम यूटिलाइज करके उसकी पावर निकालते हैं और दैट इज गिवन बाय वन नंबर, रवि को यदि शुक्र मदद कर रहा है तो उनको एक पॉइंट मिल गया, चंद्र मदद कर रहा है दूसरा पॉइंट मिलेगा, लाइक दैट वी आर गेटिंग टोटल लग्न एंड सेवन प्लैनेट दिट इज 8 नंबर, तो वी आर गेटिंग दैट, ये बाकी डिटेल आपको चिपलकट्टी साहब ने भी बता दिया है, सो उस ताकत से हर एक हाउस में प्रत्येक प्लैनेट की जो ताकत निकल के आती है उस ताकत से हम उपजय स्थान से उसकी टोटल मानेंगे उसी प्लैनेट को, जैसे रवि को हाउस फर्स्ट हाउस में सेवंथ हाउस में और टेंथ हाउस में अलेवंथ हाउस में जो पॉइंट मिलेंगे वो उसकी हम ताकत उपजय स्थान की लेते हैं और उस बारे में डिटेल अभी आपको आगे नेक्स्ट सेशन में बताएंगे, वैसे वो उपजय स्थान और कारक के बारे में दोनों का महत्व क्या है, किसी भी कुंडली में किसी भी इवेंट के बारे में अगर हमें बात करनी है तो उसका कारक क्या होगा एंड देन ऑल्सो द रूट कारक क्या चीज है उस बारे में स्टडी हम करें तो हमें इवेंट है या नहीं, पहली चीज शादी का वो होने वाली है या नहीं पहले यहां से देखेंगे, इफ इट इज डिले वो डिले का भी हमको देखना पड़ेगा, तो सारी चीजें शुरू होता है सेकेंड सीजन में मैं फिर बात करूंगा और नो आई हैंड ओवर दिस टू मिस्टर मनु.
दीपक जी ने और कृष्णा जी ने आपको बताया कि अष्टका वर्ग में पहले तो ये है कि प्लैनेट की पोजीशन और लग्न की पोजीशन को देख के हमने बिंदुस डाल दिए, सो हर एक प्लैनेट का हर एक हाउस में कितने बिंदुस आ रहे हैं, प्लैनेट का खुद के जहां पे वो बैठा है उसके बिंदुस क्या है, तो एक अष्टका वर्ग टेबल हमें मिल गया. सेकेंडली उपजय हाउसेस का महत्व क्या है वो कृष्णा जी ने हमें बताया है, तो आई वुड बी टेकिंग दैट अ लिटिल फर्दर, क्योंकि कृष्णा जी ने वेरी स्टडी द सिस्टम, उन्होंने देखा कि अभी उपजय हाउसेस आर रिलेटेड, अब आप फर्स्ट हाउस को देखेंगे तो उपजय स्थान आर अ फ्यू हाउसेस एंड इफ यू कंसिडर द सेवंथ हाउस और द टेंथ हाउस तो उपजय स्थान चेंज, सो जस्ट सो दैट द सिस्टम बिकम्स साइंटिफिक कृष्णा जी क्रिएटेड अ नोमेनक्लेचर कि फॉर एनी हाउस आपको अगर देखना है कि कौन से पिछड़े हाउसेस हैं तो हाउ डू यू सी दोस हाउसेस. ओके सो ये जो नोमेनक्लेचर है हम लोग बोलते हैं ए बी सी डी ई हाउसेस, बट दैट वाज मेड सो दैट इट बिकम्स वेरी इजी. अगर आप सेवंथ हाउस को देख रहे हैं तो ए बी सी डी हाउसेस क्या है, बेसिकली ए बी सी डी हाउसेस आर नथिंग बट उपछाया स्थान. तो फॉर इंस्टेंस अगर हम लोग यही देखें if we again consider this house of marriage, okay, so now house B हमने यहाँ पे डाल दिया है. So basically हम लोग क्या बोलते हैं कि okay, marriage के लिए the eighth house is our कारक स्थान, जैसे कृष्णा जी ने explain किया. तो कारक स्थान को क्योंकि वो इतना महत्व रखता है हमारे theory के अंदर, हमने उसको एक symbol दे दिया A. That means for any house that you are considering, we will take the eighth house. Seventh house के लिए we will take the eighth house, since it is so very important. हमने उसको एक सिंबल दे दिया A. Okay, and the event that you are considering, which is marriage. Marriage के लिए हमने इसको consider कर दिया B. So this is like the nomenclature that we are having. That the third primary which है house is C, which is the fifth house from B. So 1, 2, 3, 4, 5. So ये A, B, C का जो है तीन houses, they are primary Upachaya sthans. और जैसे Ash will explain later on why these three primary Upachaya houses are important, क्योंकि जब हम लोग worksheet में देखेंगे Ash will explain कि planet की strength कैसे आती है. These three houses become very very play a very primary role in finding the strength of a planet. Okay, now ये तीन houses तो हो गए. अब what is the significance of house B and house E? These अभी कृष्णा जी ने बताया कि these are secondary Upachaya sthan. तो सेकेंडरी उपचार स्थान तो है, बट इनका भी सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ टाइमिंग ऑफ इवेंट्स. अगर आपको कोई भी टाइम करना है इवेंट, फॉर इंस्टेंस मैरिज टाइम करनी है, तो कृष्णा जी ने बोला था कि मेजॉरिटी ऑफ यू इफ यू चेक योर ओन चार्ट्स एंड इफ यू नो द बर्थ डिटेल्स एंड इफ यू फाइंड आउट कि आपकी कौन सी अंतरदशा के अंदर मैरिज हुई, यू विल फाइंड दैट द मैरिज माइट हैव हैपेंड इन द अंतरदशा ऑफ लॉर्ड ऑफ डी और लॉर्ड ऑफ ई. दैट मींस द लॉर्ड्स ऑफ बोथ ऑफ दीज हाउसेज आर वेरी वेरी ईगर टू गिव इवेंट. ओके तो विमशोत्तरी दशा इज लाइक अवर टाइम स्केल. अगर आपको इवेंट्स टाइम करने हैं तो हम लोग विमशोत्तरी दशा को टाइम स्केल में रखेंगे, विच इज अ स्पैन ऑफ 120 ईयर्स. ऑल्दो नॉर्मल लाइफ स्पैन इज इंक्रीजिंग, बट हो सकता है पुराने जमाने में द पीपल यूज टू लिव दैट लॉन्ग फॉर 120 ईयर्स. सो इन दैट टाइम स्केल so in that time scale if you want to check the event kab hoga, that's the reason why the D and the E houses are very important. Aur jaise Krishna ji ne bataya, if the lord of house A, which is the karak sthan for B, which is the eighth house from B, agar hum log B seventh house ko le rahe hain, to the karak house, if that is spoiled, then the results of B even may not come. Ho sakta hai marriage ho hi na agar karak is completely spoiled. ओके जैसे वीनस का डिस्टेंस 43, वीनस का डिस्टेंस फ्रॉम सन इज मोर देन 43, सैटर्न एस्पेक्ट्स वीनस. तो आई मीन वी गो इन मोर डिटेल्स व्हेन वी एक्चुअली टेक अप एक्चुअल चार्ट्स एंड एश एक्सप्लेन्स दोस चार्ट्स विद द वर्कशीट, बट फॉर नाउ वी नो दैट दीज आर द प्राइमरी पुछाया हाउसेज एंड डी एंड ई एंड द लॉर्ड्स ऑफ दीज आर वेरी वेरी ईगर टू गिव द इवेंट. नॉट ओनली दैट, एनी प्लैनेट सिचुएटेड इन डी एंड ई विद अष्टका वर्ग बिंदुज मोर देन 4 विल ऑल्सो बी वेरी वेरी ईगर टू गिव द इवेंट. तो ये तो प्लैनेट्स हमने देखी है. And you will find that if you look at your charts, this is going to be the case. Let's go to the next slide. Okay, now, yahan pe, what we are trying to do is, we consider each of those 12 houses. Yeah. First house, second house, third house lehenge, fourth house lehenge. And we will try to see ki A, B, C, D ka jo houses ka structure hai, wo kaisa hai, and how does it change from house to house. Toh agar hum log first house le rahe hain as karak sthan, toh B house kya hoga, C house kya hoga. Now it is very important. Abhi see, initially toh I think it will help ki if you are using the Upachaya program that Dona ji has created, because it will give you at a glance ki koi bhi particular house ke liye, kaun sa house C hai, kaun sa house A hai, D hai, E hai. But as you advance more in your studies, it is going to be very important ki agar aap ek chart dekhen, you should do it manually without even thinking ki okay, agar mera marriage ka sthan अगर सेवेंथ हाउस है तो मेरा कारक स्थान यही है, मेरा हाउस सी यही है, हाउस ई ये होगा और डी ये होगा. तो इट शुड बी लाइक सेकेंड नेचर टू यू. यू शुड नॉट बी इवन थिंकिंग अबाउट इट. अगर इतनी फैमिलियरिटी आ गई, यू विल फाइंड दैट analyzing the worksheet and studying the program will become very easy. But for now, even if you use a reference, ki, okay, har ek house ke liye mere upar chhaya sthans kya hai, that is going to help. So let us look at this. Now we are considering the focus is on the first house, which is the Karak sthan, and the event is the sixth house. Now sixth house, kyunki ye event is more important in our materialistic world. Although Karak apna first hai, materialistic world mein house D is the sixth house. So what we see from this is for the first house and its upachaya houses. That means A se leke, because A is the Karak, to hum log upachaya sthans wahan se lenge. That means the third, the sixth, the tenth and the eleventh. Ye sare mere upachaya sthan ho gaye from the first house. Lekin event kya dekh rahe hain? Event is my event, the house P. To hum log dekh rahe hain B ko, but upachaya sthan are from the Karak sthan. Okay, ab B kis, sixth house kis kis ko denote karta hai? So that's why we say from the first house and its upachaya houses, the capacity of the person, the capability of doing own business, service, line of business, social status. Matlab jitni sari cheeze hain jo sixth house se milti hai, we are actually looking at from this house, which is B. So from that perspective, B is very important, but status, the karak, jo upachaya sthan hai, wo hum log A se consider karenge. So this is our first house. Let's move on to the second house. Okay, in the second house now, abhi Krishna ji ne bataya tha that we are now considering marriage, which is like the seventh house. So our seventh house is going to be B, the eighth sthan is going to be A. So we say from the second house and its upachaya houses, the marriage, the happiness of conflicts in the married life, the number of marriages, unmarried state, friendships, with the opposite sex, and the timing of all of these matters can be judged. That means second house becomes important, the upachaya sthan from all of those. And you will find that B and E, which is the fourth and the twelfth houses, will become eager in their antar dasha to give marriage, or planets situated in D or E with ashtaka varna bindus more than four will be very eager to give marriage. So we have now seen the second house. Let's move on to the next one. Okay, the next one is the 8th house with respect to B. The Karak sthan is A, and from the 3rd house and its upachaya houses, the longevity and the health can be judged along with the timing of events. Because we also say that the 8th house se hum log death ko dekhte hain, aur isiliye house B apna death ho gaya. But you will acknowledge the importance of this system when you find out ki we also have to look at the Karak sthan to find out ki agar log detail mein jayenge ki death kaise hogi, kya hoga. Of course those are advanced topics. But the 8th house is going to be the house for looking at the longevity of a native, and the 8th house from that house is going to be A. And you will find that death jab hoti hai, normally in most cases you will find that the death may happen in the antar dasha of the lord of the lagna or the lord of the 5th house, which is unique in the system, because har ek house ke liye we are now finding out kaun kaun se eager planets hain, and it is so very easy to time events based on the points in the worksheet, which you will see later on. And similarly, isse like for instance agar mother ya father hai, like for instance father ka agar hum chart dekh rahe hain, to we now know that father's house is like the 9th house. So if you want to do a post analysis, agar we know the event, then you will find that the 8th house from father is going to be the 4th house. So 8th house from father ko 4th house B consider kar diya, that means 11th is going to be house A. So usse maybe agar pata hai ki father ka jo expire hue log kis date ko hue the, you will find that in most cases this is going to match ki father ka house ya mother ka house, which in our system we consider house, the 3rd house, as the house of mother. And in some systems you will find that some people say 4th house is house of mother or 3rd house is house of mother, but it makes sense in caste because it's easy to see, as we know wife is like the 7th house from the 1st house. Similarly, by a logical relationship we acknowledge the fact that mother's house should be the 7th house from the 9th house, which is the house of father, because it is complementary in nature. And when you check the events, you will find that in many cases it is going to match with respect to death or you know that kind of a thing. So you yourself look at go back charts, try to time it, and you will find that the 3rd house as the house of mother makes more sense with respect to this system. Okay, the next house which we are considering is the
ninth house, and the eighth house is going to be the fourth house, which is again the Karak Sthan. So on the Upachhaya Sthans, we are going to check from house A, which is the third, the sixth, again the tenth, and the 11th from A. I'm not taking absolute houses. So we have taken the third, sixth, tenth, and 11th from house A as a relative position. And from fourth house and its Upachhaya houses, the luck factor, favorable or unfavorable time, etc., can be judged so that the time period is clear. And why we are doing that? Because the ninth house is the house of fortune. And that's why if you want to really analyze fortune, look at the fourth house as well and understand the status of the Karak planet. Let's go to the next one. Okay, now this one, we are looking at the Upachhaya houses from the fifth sthan. But in the materialistic world, we are going to look at the 10th house. So the 10th house is B in our theory. And from the 5th and its Upachhaya houses, the achievement of success, authority, higher post, success in elections, starting one's own business can be judged. Why? Because we are looking at the 10th house, which gives all of these things. But again, you will acknowledge the importance of all of these Upachhaya sthans. House A ka significance kya hai? If you find that the antra of B or E, the lords of these, antra is running, you will find that agar koi politician ka ye chart hai aur ye LODs ki antra chal rahi hai, it is quite likely that he may get a position of authority. So go back, look at the charts, and you will find that this thing holds true again and again and again. I mean, to just give you a brief account, when I started with the system, I was like a non-believer. But when I looked at the charts and everything was matching so very precisely, it kind of like, you know, you're forced to believe in that system. So when you try to time yourself, you try to see how others are doing it, everything seems to be falling in the ballpark figure. So this system really makes sense. Let's do the next one. Okay, next one is the 6th house. 6th house is now our Karak Sthan. So, the 6th from A, which is going to be B. So, from the 6th house and its Upachhaya houses, the means of earning money or favorable period for earning can be judged. Why? Because it's going to be the house of income, house B. But you have to check the status of A, and in antra of B and E, you will find that your income may increase. You may get an increment. It's going to be quite a favorable period for you, and everyone would want their antardashas of B and E running all the time, which is not quite possible. Let's go to the next one. Okay, from the 7th house and its Upachhaya houses. Now, we are not considering 7th house for marriage. We are considering it as Karak Sthan. So, Karak Sthan is my 7th house. So, 6th house from 7th is going to be house B. And that's why we are kindly looking at the 12th house from the materialistic perspective. And that's the reason. Sexual relationships with the opposite sex, other than marriage partner, foreign relations and bed comforts can be judged. So here, you will find that the antra of B and E will give you these things. Let's look at the next one. From the 8th house and its Upachhaya houses, details about individuality and the personality can be confirmed. Now in this system, just look at the way in which we are using 8th house. Normally 8th house ko kya bolte hai? Bura sthan. 8th house is like the worst house in the chart. Now over here, if the 8th house ka karak is like in a very good position, you may get a very good individuality. So 8th house is not always bad. I mean, 8th house is giving death, understood, but that's only one part of it. You have to look at the other side. 8th house ka karak is in a good sthan, you will get a very good individuality. So you have to look at each of these houses from that perspective and then time events. So here we are checking the individuality of the person. Next one. Okay, we are now considering the 9th house. 9th house is the Karak Sthan. So happiness and relations and inheritable property can be judged because we are looking at the 2nd house from the materialistic world. The event is B, the Karak is A. So Karak kya hai? Karak is the cause. Or B kya hai? It is the effect. So A is the cause to give you B. And then B again becomes the Karak for some other sthan. So if you move around the chart in this manner, you will find that this cause and effect relationship is by which we kind of like live our life. Something happens, that's why we do something else. This happens, that's why we do something else. Like for instance, hum log shaadi karte hain, sex hota hai, bachche hote hain, everything is linked. So if you try to cycle it around, you will find that ek karak ka cause effect relationship is across. So first you will have marriage, uske baad you will have the 12th house, 12th house ke baad you will have the 5th house. So the cycle keeps repeating itself. Next verse. From the 10th house and its upachaya houses, courage, brothers and sisters, writing of books, contracts, agreements, publications, etc. can be judged. Why? Because we are mainly looking at the house B, and you will look at the status of house A, and these things will happen in the planets, the lord of the planets, which are the lord of 12th and the 8th house. All planets situated in these houses with more than 4 Ashtakavar Bindus. From the 11th house and its upachaya houses, anything regarding landed property, home comforts and one's own house can be judged. Why? Because we are now looking at the 4th house as B, but to know how much, kitna milega, ek chopadpatti mein rahenge ya kahan rahenge? Agar mahal mein rahenge, to uske liye aapko karak dekhna padega. House A ka kya state hai? To wo status se milega. Jaise Krishna ji hinted about root karak. So not only the karak is important, but root karak. So those are like advanced concepts. But look, go back and look at how the karak is important and look at the charts. See the status of the karak. Wo achhi sthiti mein hai ki buri sthiti mein hai? And based on that, you will know ki status kya hai bande ka. Agar wo president hai ya company mein manager hai? तो उस पे डिपेंड करता है कारक का स्टेटस इन द चार्ट क्या है. From the 12th house and its upachaya houses, any matters revolving around children can be properly assessed because we are focusing on B as the 5th house, and you will find that the status of A is very very important for children. If you find that the lord of this house is in a bad shape, it may even deny children or it may give less happiness from children. Childbirth hota hai but jaldi death ho jati hai. These things can happen when the karak is spoiled. Also, if the lord of B and E are running, you will find that in the antardasha, it is going to give the event quickly. It's going to be very eager. So if a person is expecting children, you will find that if the antardasha of the 10th house or the 2nd house is running, it is a quite a favorable period to give you childbirth. Okay, so we kind of like, what we did is we revolved around all the houses, seeing what A, B, C, D, E houses are, and I would kind of like expect that you memorize this. Memorization really helps you in analyzing charts. When you look at the way in which Ash or Krishna ji analyze charts, they kind of like look at the chart, and even without using any program, they would be able to find out, okay, mera ye agar house B hai, if I'm looking at marriage, I'm looking at childbirth, they know what is the karakstan, they know what are B and E, and if the antardasha of lord of B and E is running, they would know ki, okay, isme chances hai ki event hoga. And one more thing is that these lords, the lords of house B and E, are not only eager, but they are always beneficial for the event. Like for instance, वो कभी भी बुरा नहीं करेंगे इवेंट के लिए. तो अगर लॉर्ड ऑफ डी या ई का अगर अंतरदशा चल रहा है, तो यू कैन एक्सपेक्ट फेवरेबल रिजल्ट्स फ्रॉम हाउस बी. वो केस है. बट बाकी प्लैनेट्स के लिए यू हैव टू कंसिडर द वर्कशीट एज वेल, कि वो वर्कशीट में उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, व्हिच आश इज गोइंग टू गो इन डिटेल व्हेन ही लुक्स एट द वर्कशीट. ओके, इन दिस स्लाइड वी आर लुकिंग एट द 7th साइड. नाउ हम लोग like we look at the 7th sign, we in our system we say that the 7th sign of any planet is malefic. Now we know that all the planets always aspect the 7th house. Aur hum bolte hain Jupiter agar first mein baitha hai to 7th house ke liye it's wonderful because it is situated in the lagna and it will aspect the 7th house and it will always give benefit results. But that is not the case. The 7th house